राम श्री भक्तमाल कथा गीता वाटिका मलूक पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री राजेंद्र दास जी महाराज के मुखारविंद से 31 ट्रैक में
स्यास्ते हृदय संवित् तं ऋषिन्धमहं भजे विश्वसरग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम् परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदंक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत्त के राधा विहार विपिने रमताम मनो में। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मान परम भागवतां नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत इनके पद वंदन किए नाशं विघ्न। हरिजुआय विराजिए कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास। तुम पाछे जो और हु श्रोता हैं रस खान इनके सकल मनोरथ पुरु बहु श्री भगवान। बार बार पद वंदों श्री नाभा आभा एन जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। प्रिया दास जू के पद कमल वंदो बारंबार कीनी भक्ति रस बोधनी सीता अति सुख सार। चार युगन में भगत गे तिनके पद की धूर सर्व सुसिर धरि राखियों मेरी जीवन। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगत्यो सत्य जहा। राधे श्याम जय राधे
राधे श्याम जय राधे श्याम
सीता राम जय सीता राम
सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम।
राधे श्याम जय राधे श्याम
राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
सीताराम जय सीताराम
सीताराम जय
राधे श्याम जय राधे श्याम
राधे श्याम जय राधे श्याम
सीताराम जय सीताराम
सीताराम जय सीताराम
जय रघुनंदन
जय रघुनंदन जय सियाराम
जानकी वल्लभ सीताराम
जानकी वल्लभ सीताराम
कमला विमला मिथिला धाम
कमला विमला मिथिला धाम
अवध सरयू सीताराम
अवध सरयू सीताराम
जय नंद नंदन जय घनश्याम
जय नंद नंदन जय घनश्याम
राधा वल्लभ राधे श्याम
राधा वल्लभ राधे श्याम
जय जय श्यामा जय जय
जय जय श्यामा जय जय श्यामा
जय जय श्री वृंदावन धाम
जय जय श्री वृंदावन धाम
श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री गिरिराज महाराज की
जय
श्री यमुना महारानी
की जय
श्री यमुना महारानी की जय श्री गौ माता की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की परम शुद्धे पूज्य श्री भाई जी महाराज की पूज्या श्री माता जी की परम श्रद्धे पूज्य श्री बाबा महाराज की उनके पावन जन्म शताब्दी वर्ष की श्री गीता वाटिका की सर्व संत वैष्णव भगवान की श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की पूज्य श्री सद्गुरुदेव पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज की पूज्य भक्तमाली श्री सद्गुरुदेव भगवान की नीचे इसमें गद्दा पे बिठा दो नीचे आपको देर तक बैठने में तकलीफ है दीनबंधु दास जी के निकट आ श्री रास बिहारी भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की
सब संतन की
जय,
सब भक्तन की
जय,
सब विप्रन की
जय,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। कली पावन अवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय अखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से परम पवित्र श्री गीता वाटिका के दिव्य परिसर में इस दिव्य भव्य सत्संग मंडप में परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय प्रीति रसावतार पूज्य श्री राधा बाबा महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष है ना, हाँ 100वें जन्म से फिर शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, तो 100वां जन्म महोत्सव यहाँ मनाया जाएगा और उसके बाद एक वर्ष और ये शताब्दी वर्ष महोत्सव चलेगा। हम लोग पूज्य बाबा के जन्म शताब्दी महोत्सव के इस पावन अवसर पर भक्त चरित्रों के माध्यम से भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त करने के लिए यहां उपस्थित हैं। भगवान का एक नाम उत्सव प्रिय है, भगवान को उत्सव प्रिय है, उत्सव प्रिय भगवान का एक नाम उत्सव मूर्ति है, उत्सव प्रिया और उत्सव मूर्ति, भगवान उत्सव मूर्ति है। श्रीमद् भागवत में कई जगह भगवान को उत्सव कहा गया, भगवान ही उत्सव स्वरूप, इसीलिए सनातन धर्म की पवित्र परंपरा वह उत्सवमयी परंपरा है। जब देखो तब उत्सव, और भगवान उत्सव मूर्ति हैं, उत्सव प्रिय हैं, उत्सव स्वरूप हैं, इसलिए उनके उपासक भक्त भी उत्सव प्रिय होते हैं, क्योंकि उपास्य के गुण उपासक में आ जाते हैं, आराध्य के गुण आराधक में आ जाते हैं, उपास्य के गुण उपासक में आ जाते हैं, दोनों ही उत्सव मूर्ति हैं, दोनों ही उत्सव प्रिय हैं। हम लोग भारतवर्ष के निवासी हैं, भारतवर्ष के प्रधान देवता नरनारायण हैं जो बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं, वहां बद्रीनाथ जी की जो उत्सव मूर्ति है उस उत्सव मूर्ति के रूप में कौन है आप लोगों को ज्ञात होगा, बद्रीनाथ भगवान की उत्सव मूर्ति के रूप में कौन है, बद्रीनाथ जी तो अचल रूप में विराजमान है, उनकी उत्सव मूर्ति के रूप में उद्धव जी महाराज है। बद्रीनाथ जी की उत्सव मूर्ति भागवत प्रवर श्री उद्धव जी महाराज, भगवान के प्राण सखा श्री उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ भगवान की उत्सव मूर्ति है। भगवान बद्रीनाथ उद्धव जी के रूप में ही मंदिर से बाहर पधारते हैं, डोला में विराजते हैं, अथवा नीचे आकर जो उनकी जब तक पट बंद रहते हैं पूजा होती है उसमें उद्धव जी ही पधारते हैं। तस्मिन तज्जने भेदाभाव, उद्धव भगवान की विभूति है, वृष्णि नाम उद्धवश्चास्मी, तो भगवान के स्वरूप में ही उद्धव जी का आदर किया जाता है, उनसे अलग मानकर उद्धव जी का आदर नहीं। और स्वयं भगवान का वाक्य है कि उद्धव तुम मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं हो। भागवत में भगवान ने कहा है, हे उद्धव तुम मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं हो, और तुम मुझे कितने प्यारे हो। स्वयं श्रीमुख से कह रहे हैं, न तथा मे प्रियतम आत्मयो निर्न शंकर न च शंकर शण न श्री नैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, आप मुझे जितने प्रिय हैं उतना प्रिय हमें ब्रह्मा जी नहीं। अपना बेटा चाहे जैसा हो सबको प्रिय होता है, और वैसे सारा जगत भगवान से उत्पन्न है, सभी अमृतस्य पुत्राः, लेकिन ब्रह्मा जी को साक्षात पुत्र कहलाने का अधिकार प्राप्त है, भगवान के नाभिकमल से प्रकट रहे, और वह भी बड़े विनीत हैं, अपने पिता भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, द्वादश महाभागवतों में प्रथम महाभागवत हैं, वेद गर्भ हैं, आज्ञा पालक हैं, सर्वगुण संपन्न परम सुशील और विनीत हैं। ऐसा किसी के पुत्र हो तो कितना प्रिय होगा। भगवान कहते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी भी मेरे साक्षात पुत्र होने पर भी मुझे उतने प्रिय नहीं है, हे उद्धव जितने प्रिय तुम हो। बहुत से लोगों को अपना बेटा प्रिय नहीं होता, पर पोता प्रिय होता है, बेटे से ज्यादा पौत्र प्रिय होता है, क्योंकि पौत्र के प्रति वात्सल्य अधिक जग जाता है। सृष्टि के क्रम में शंकर जी पौत्र हैं, ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से प्रकट भए हैं, तो बोले आपको शंकर जी प्रिय हैं, कहते शंकर जी भी उतने प्रिय नहीं हैं। जबकि शंकर जी भी भगवान के अनन्य भक्त हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती, अहर्निश नाम जपने वाले हैं, निष्प्रपंच होकर भजन करने वाले हैं, कहते वो शंकर जी भी हमें उतने प्रिय नहीं हैं। न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर, बोले चलो कोई बात नहीं, आपको अपने अग्रज बड़े भैया दाऊ जी प्रिय होंगे, बलदेव जी प्रिय होंगे। भगवान कहते न च संकर्षण, संकर्षण दाऊ दादा भी मुझे उतने प्रिय नहीं, इतने प्रिय तुम हो। अब फिर ऐसा होगा कि तुम्हें कोई प्रिय न हो, अपनी प्राण बल्लभा रुक्मिणी जी प्रिय होंगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कोई प्रिय नहीं होता पर पत्नी तो प्रिय होती ही है, तो आपकी अर्धांगिनी रुक्मिणी महारानी आपको प्रिय होंगी। भगवान कहते रुक्मिणी भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है। अब फिर आपको अपना शरीर प्रिय होगा, हम लोगों का शरीर पांच भौतिक है, सप्त धातु विनिर्मित है, विनाशी है, मलमूत्र का भांड है, गंदगी पैदा करने की मशीन है, ये सब बातें बार बार कही सुनी जाती हैं और हम सबको पता है। इसके बाद भी हम लोगों का अपने शरीर से इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है शरीर से, कि श्रीमद् भागवत में एक वाक्य तो ऐसा है, दधीचि महर्षि कह रहे हैं देवताओं से कि तुम हमसे हमारी हड्डियां मांग रहे हो, अरे थोड़ा विचार तो करो, जिजुवशूणाम जीवानाम आत्मा प्रेष्ठ हिप्सितः क उत्सहित तम दातुम भिक्ष माणाय विष्णवे। इन मनुष्यों में शरीरधारियों में जीवित रहने की इच्छा इतनी बलवती है कि वे अच्छी प्रकार से जानते हैं कि शरीर विनाशी है और भगवान का दिया हुआ है, और वे भगवान विष्णु स्वयं आकर कहें कि भैया तुम्हारे शरीर की हमें थोड़ा जरूरत है, हमारा शरीर हमको वापस कर दो, तो बहानेबाजी कर देगा, भगवान को भी शरीर मांगने पर नहीं देगा, तुम हड्डी मांग रहे हो, कह देगा महाराज आप तो सत्य संकल्प हैं, हमारे विनाशी मलमूत्र भांड शरीर की भला आपको क्या आवश्यकता पड़ गई, आप अपने संकल्प से ही अपना प्रयोजन सिद्ध कर लें, मुझे तो अभी जीने की इच्छा है, मुझे कुछ दिन और रहने दीजिए। भगवान की याचना करने पर भी शरीर नहीं देता है और फिर तुम हड्डी मांग रहे हो। देवराज इंद्र ने कहा महात्मन ये जो बात आपने कही है ये सामान्य जीवों की बात कही है, ये महापुरुषों की बात नहीं है, ये महात्माओं की बात नहीं है, उनका तो स्वभाव ही मन वाणी क्रिया से उपकार करने का होता है, उन महात्माओं के लिए कुछ भी दुस्त्यज नहीं है जिनके चित्त में परोपकार की भावना है। आपके परोपकारी स्वभाव को हम न जानते होते तो हम आपके सामने याचना करने आते हैं? जानते हैं आपको अपने इस नाशवान शरीर में किंचित भी ममता नहीं है, आप संपूर्ण जीव जगत का परमहित चाहते हैं, इसलिए हम आपके सामने याचना करेंगे। यहां हमारे निवेदन करने का एक ही प्रयोजन है कि जब हम जीवों को अपना विनाशी शरीर इतना प्रिय है तो भगवान का शरीर ना तो सप्त धातु विनिर्मित है ना पंचभूत रचित है, भगवान तो सच्चिदानंद घन है, सच्चिदानंद घन है, दिव्य अमायक चिन्मय भगवान का स्वरूप है, चिदानंदमय देह तुम्हारी राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तो मोह निशा लवलेसा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो जब इन शरीरधारियों को अपना विनाशी शरीर इतना प्रिय है तो आपका स्वरूप तो अविनाशी है, आपको अपना श्रीअंग श्री विग्रह कितना प्रिय होगा? भगवान कहते हैं सच्चिदानंदमय हमारा जो देह है ये भी मुझे उतना प्रिय नहीं है। आत्मा शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है शरीर, एक अर्थ है चेतन। हम लोगों में शरीर शरीरी भेद है, शरीर जड़ है और शरीरी आत्मा चेतन है, ये भेद है, किंतु परमात्मा में शरीर शरीरी भेद नहीं है, भगवान का शरीर भी भगवान और भगवान की आत्मा भी भगवान, भगवान में शरीर शरीरी भेद नहीं है, तो दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं। भगवान कहते हैं हमें अपना स्वरूप श्री विग्रह उतना प्रिय नहीं है और हमें अपना आत्मा भी उतना प्रिय नहीं है, प्राण भी उतना प्रिय नहीं है। कितना प्रिय? बोले उद्धव जितना अधिक प्रिय तुम हो। यहां उद्धव उपलक्षण है, तात्पर्य भगवान के कहने का यह है कि हे उद्धव तुम्हारे जैसे भक्त मुझे जितने प्रिय हैं उतना प्रिय मुझे कुछ भी नहीं। यह है भगवान की भक्त प्रियता, यह है भगवान की भक्त प्रियता। इस भक्त प्रियता के कारण ही भगवान भक्तों का उत्सव मनाकर प्रसन्न होते हैं। उत्सव किसका किया जाता? जो प्यारा होता उसका उत्सव किया जाता, और भगवान के सबसे प्यारे भक्त हैं। ऐसे भक्तों को प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री ठाकुर जी हैं, ऐसे ही ठाकुर जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय भक्त हैं। भक्त श्री ठाकुर जी का उत्सव मनाकर बहुत आनंदित होते हैं, और इसी सिद्धांत के अनुसार ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् के अनुसार श्री ठाकुर जी भी अपने प्राण प्यारे भक्तों का उत्सव मनाकर बहुत राजी होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। हमें लगता है इसलिए उत्सव में स्वयं न पधारकर उद्धव जी को भेजते हैं और उद्धव जी को उत्सव मूर्ति के रूप में भगवान ने प्रस्तुत किया है बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ। हम लोग श्री ठाकुर जी के उत्सव मनाते हैं, श्री रामनवमी, श्री जानकी नवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राधाष्टमी आदि उत्सव, और श्री ठाकुर जी अपने प्यारे भक्तों के उत्सव मनाते हैं। हम लोग ऐसा समझें कि श्री गीता वाटिका में जो राधाष्टमी महोत्सव होता है उसके आयोजक तो हैं पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज एवं मां भाव रस वारिधि निमग्न पूज्य श्री राधा बाबा, वे राधाष्टमी महोत्सव के आयोजक हैं। उन्हीं के भावमय सानिध्य में हम लोग उस उत्सव का रसास्वादन करते हैं। और अब बाबा का उत्सव हो रहा है तो बाबा के उत्सव के आयोजक कौन है? ठाकुर जी के उत्सव, ठाकुर जी का जो उत्सव है उसके आयोजक उनके प्यारे भक्त हैं, तो ठाकुर जी के जनों का जो उत्सव है उसके आयोजक कौन है? उसके आयोजक साक्षात ठाकुर जी श्री जी हैं। हम लोग तो लड़ुआ खाने वाले हैं, उत्सव में आए हैं, बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलेगा, सत्संग मिलेगा, रास बिहारी की लीला का दर्शन होगा, खूब आनंद हो रहा है, हम लोग तो इसलिए आए। वे भाग्यशाली हैं जिन्हें श्री ठाकुर जी ने अपना जन मान करके पूज्य बाबा के उत्सव में किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार से निमित्त बनाया है, वे अत्यंत भाग्यशाली। हम मन कल्पित कोई बात नहीं कहते। आदि पुराण का एक वचन है जिसमें ये बात स्पष्ट कही गई है, भगवान कहते हैं कि जो मेरे प्यारे भक्तों का उत्सव इस पृथ्वी पर मनाते हैं उन भक्तों का महोत्सव मैं अपने नित्य धाम में मनाता हूं। ये ठाकुर जी कहते हैं जो मेरे प्यारे भक्तों का उत्सव इस धरती पर मनाते हैं मैं उन भक्तों का, उन उत्सव मनाने वाले भक्तों का महोत्सव अपने लोक में आयोजित करता हूं, नित्य गोलोक साकेत वैकुंठ में उत्सव आयोजित करता हूं। अब ये व्यास वचन है, पुराण वचन है, ये बात तो हम लोगों के लिए पक्की हो गई कि हम लोग तो बाबा के उत्सव में सम्मिलित भए हैं, हमारा भी नाम वहां के रजिस्टर में लिख गया, भले ही बतासा बटे पर उत्सव तो होना है। भगवान के भक्त वे सर्वथा ईर्ष्णाओं से रहित होते हैं, उनमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है, इसलिए तो वे भक्त होते हैं, इसलिए वे अनुरागी होते हैं, इसलिए वे प्रेमी होते हैं, क्योंकि इन त्रिविध इच्छाओं की समाप्ति के बिना चित्त शुद्ध नहीं हो सकता, और जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, विशुद्ध नहीं होगा, तब तक दिव्यात दिव्य युगल के प्रेम का प्रकाश नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने कहा सुतवित लोक एषणा तिनी तेहि करमती इन कृत नमलिनी। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, ये तीन प्रकार की जो इच्छाएं हैं इन इच्छाओं ने किसके चित्त को मलिन नहीं किया? बड़ी विचित्र हैं ये इच्छाएं, ऐष्णाएं। कई बार यह इच्छाएं वेश परिवर्तन करके भी आ जाती हैं। और विचित्र बात यह है कि एक रहेगी तो फिर दो का रहना अनिवार्य है, दो अपने आप रहेंगे, वो अकेली कोई रहती नहीं, एक के साथ दो का संबंध जुड़ा, वो दो रहेंगी तो तीसरी आ जाएगी, एक रहेगी तो दोनों और आ जाएंगे। और उन तीन प्रकार की ऐषणाओं में सबसे प्रबल होती है लोकेष्णा, और लोकेष्णा कहीं न कहीं चित्त में किसी न किसी कोने में जब रहती है तो प्रवेश परिवर्तन करके वित्तेष्णा भी आ जाती है और पुत्रेष्णा भी वेश परिवर्तन करके आ जाती है, पुत्रेष्णा शिष्येष्णा बन करके आ जाती है। और जो ज्ञानी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो प्रेमी अनुरागी हैं, जो रसिक जन हैं, उनके चित्त में इन तीनों प्रकार की ईष्णाओं का सर्वथा अभाव होता है। और ऐसे महान भाव ही उत्सव मनाने योग्य होते हैं जिनकी त्रिविध ईष्णाएं निवृत्त हो चुकी हैं। अच्छा आप लोग बताइए, मुंह देखी बात मत करना, अपने भीतर बैठे हुए अंतर्यामी से पूछ करके बताइए, परम श्रद्धेय सेठ श्री जयदयाल गोविंद का जी, परम श्रद्धेय पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, परम श्रद्धेय पूज्य श्री राधा बाबा, परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, ये जो चार विभूतियां इस युग में प्रकट हुई, दो गृहस्थ संत और दो विरक्त संत, आप लोग बताइए, हमारे भीतर बैठे हुए राम जी तो कह रहे हैं कि ये चारों महापुरुष पूरी तरह त्रिविध प्रकार की ईषणाओं से रहित हैं, इसलिए ज्ञान की भक्ति की प्रेम की उस पराकाष्ठा को इन्होंने प्राप्त किया और लाखों लाखों जीवों को श्री ठाकुर जी से जोड़ने वाले हो गए। आपका अंतःकरण स्वीकार करता है कि नहीं? आपने तो इन महापुरुषों को अति निकट से देखा है, संसार की मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा वाह वाह जय जयकार ये महापुरुष चाहते थे क्या, अथवा जो महापुरुष हैं वो चाहते हैं क्या? अच्छी बात राम जी ये है, जो चाहते हैं वो इसके योग्य ही नहीं है और जो नहीं चाहते हैं वे ही योग्य। बोलो वृंदावन बिहारी। एक पृष्ठ किसी को लिखना आ जाए, छोटी मोटी पुस्तक, तो उस पुस्तक में वो ये जरूर रचयिता का परिचय, उसका फोटो, कहाँ जन्म हुआ, कौन कौन से बड़े बड़े काम किए हैं, ऐसा सब होता कि नहीं? क्या कहते उसको भगवान जाने, ऐसा कुछ उसका परिचय होता है, कौन कौन से पदों पर कार्य कर चुके हैं, क्या क्या हो चुका है, सारी बात उसमें लिखी जाती है। और श्री सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, हजारों पद इन्होंने लिखे, जीवन भर भगवान के गुणों को गाया, अपनी लेखनी से कहीं अपना चरित्र नहीं लिखा। लिख जाते तो हम लोगों को बड़ी सुविधा होती, सुविधा यह होती कि ये जो तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं आज भी संतों के चरित्रों के संबंध में कि वे कहां के थे, सबसे बड़ी समस्या तो ये वो कहां के थे, ये जो अनेक प्रश्न उठते हैं इन सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता क्योंकि लेखक ने खुद लिखा है, उससे बड़ा प्रमाण कौन होगा। पर इन महापुरुषों ने अपने संबंध में कहीं कुछ क्यों नहीं कहा? बोले इसीलिए नहीं कहा कि उनके चित्त में लोकेष्णा की सूक्ष्माति सूक्ष्म गंध भी नहीं थी। वे चाहते, वे जानते थे, अरे चरित्र तो भगवान का, हमारे जैसे मनुष्य का चरित्र। जिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का चरित्र हम निवेदन करना चाह रहे हैं वे गोस्वामी जी अपना परिचय दे रहे हैं।
कभी न हो नहीं चतुर कहावूं, कभी न हो नहीं चतुर कहावूं, मतियन अनुरूप राम।
अरे बोले आपको लोग कहते हैं महाकवि तुलसीदास। अरे बोले तो ठीक है, लोग कहते हैं, कहने वालों को कहने दो।
शंभु प्रसाद सुमति हियहुलसी,
शंभु प्रसाद सुमति उलसी,
राम चरित मानस कवि तुलसी,
राम चरित मानस कवि तुलसी।
चलो ठीक, मान लिया भोले बाबा की कृपा से कवि तुलसीदास जी के रूप में आप प्रसिद्ध हो गए। और वो कहते हैं हम कवि भी नहीं हैं, रच महेश निज मानस राखा, पाए सु समय उमासन भाखा। वो बोल रहे हैं और मैं कलम लेकर लिख रहा हूँ, भाषा बद्ध करो में सोई, उसको मैं लिपिबद्ध कर रहा हूँ, बोल के लिखवा रहे हैं। इसलिए हमें कोई अहंकार नहीं कि हम कवि हैं, हमने लिखा है। चलो ठीक है, ये बात तो आपकी मान ली। कवियों का कुछ परिचय होता है, आप अपना परिचय तो दीजिए।
वंचक भगत कहाय राम के,
वंचक भगत कहाय
कर कंचन को काम के,
किंकर कंचन को काम के,
इन महू प्रथम रेख जग मोरी,
इन महू प्रथम
भिंग धर्म भज धंधत गोरी,
भिंग धर्म भज धंधत गोरी,
जो अपने अब गुण सब कही हो,
जो अपने अब गुणे सब कही हो,
बाढ़े कथा पार नहीं नहीं हो,
बाढ़े
अलप बखाने,
ताते में अति अलप बखाने,
थोरे में समझिए सयाने,
थोरे
जो अपने अवगुण सब कहे हूँ, बाढ़े कथा पार नहीं ले, ताते में अति अल्प बखाने, थोरे में समझे इसे। ये किसका परिचय है? ये संत तुलसीदास जी की लेखनी से स्वयं का दिया गया परिचय। भगवान के प्राण सखा उद्धव के अवतार सूरदास जी की लेखनी से सूरदास जी का परिचय क्या है? सूर कहा कहे द्विध आंधरो, हम दोनों तरफ से हैं, बाहर की भी फिर फूटी भीतर की भी, बिना मूल को छोड़ो हो हरि सब पतितन को नायक, मौसम कौन कुटिल कल कामी। ऐसा दैन्य है जिन भक्तों के अंतकरण में, वहां लोकेष्णा रहेगी, राम 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 संभव नहीं है। ऐसे जो महात्मा हैं, ऐसे महात्माओं का उत्सव ठाकुर जी मनाते हैं। इसलिए कोई महात्मा नहीं चाहता मेरा उत्सव मनाया जाए। श्री नारायण भैया जी बैठे हैं और भी अनेक प्रेमी महान भाव बैठे हैं, बाबा इस संबंध में कुछ कह के गए बोलिए, अथवा कोई संत कह के जाता है क्या ये कैसे हो रहा है? सर्वांतर्यामी भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु युगल सरकार श्री राधा माधव प्रभु की इच्छा से हो रहा है। इसलिए भैया हम सबसे पहले ये निवेदन करें, पूज्य बाबा के उत्सव के आयोजक हैं श्री राधा माधव विराज रहे, हम लोग तो लड़ुआ खाने वाले, प्रसाद पाएंगे, लड्डू जीमेंगे और खूब कथा सुनेंगे, खूब कीर्तन करेंगे, खूब रास दर्शन करेंगे, खूब नृत्य करेंगे। इसीलिए ठाकुर जी का उत्सव संत मनाते हैं और संतों का महोत्सव ठाकुर जी मनाते हैं। एक जिज्ञासा का प्रसंगवश और समाधान कर देते हैं। पूज्य स्वामी श्री राम सिद्धदास जी महाराज इस सदी के महान वीतराग लोकेष्णा से शून्य महापुरुष थे। उनकी वसीयत ही एक प्रेरणा बन गई। सैकड़ों वर्ष के बाद भी जब उनकी वसीयत लोग पढ़ेंगे तो लोग सोचेंगे कि ऐसे भी महात्मा भारतवर्ष में गए। और स्वामी जी इसके बिल्कुल भी पक्षपाती नहीं थे और उनकी भावना का आदर भी किया गया, उनका उसी पद्धति से सब कुछ हुआ। स्वामी जी का कोई उत्सव महोत्सव घोषित करके नहीं मनाया गया। लेकिन उसी काल में जब स्वामी जी भगवत धाम गए, उसी काल में ये ग्रंथ पुनः प्रकाशित हो रहा था, भक्त बल्लभा टिप्पणी अप्राप्त हो चुका था, फिर ये पुनः मलुक पीठ से प्रकाशित हुआ। तो ये महाराज जी की पुरानी टिप्पणी है, इसी से भक्तमाल का अध्ययन अध्यापन होता है और कथा कहने वालों के लिए भी ये संक्षिप्त पुस्तक छोटी भी है, साथ रखने के लिए भी ठीक रहती है, कथा कहने में भी ये बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। ये इसका केवल पुनः प्रकाशन दूसरा संस्करण ही होना था। ये बात किस सन की है? 2003 की होगी। स्वामी जी का शरीर कब शांत हुआ?
2006 है?
हाँ, तो स्वामी जी का शरीर उस समय शांत ही हुआ था और उस समय ये पुस्तक प्रेस में जा रही थी पुनः प्रकाशन के लिए। तो हमने प्रेस की सामग्री देखी तो उसमें स्वामी श्री राम सुखदास जी के लिए महाराज जी ने 4 लाइनें लिखी थी। तो तुरंत हमने महाराज जी से पूछा, हमने कहा महाराज जी स्वामी जी तो इसके बहुत विरोधी थे और आप सभी संतों की भावनाओं का आदर करते हैं, फिर आपने स्वामी जी के संबंध में ये क्यों लिख दिया, गद्य में कुछ लिखा? महाराज जी बोले, स्वामी जी की निष्कामता का हम आदर करते हैं, उनकी वैराग्य वृत्ति से सभी साधकों को प्रेरणा लेनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस युग के इतने बड़े निष्काम और लोकेशना से रहित संत का नाम हम बिल्कुल भी न लें, ये साहस हमें नहीं हुआ, इसलिए हमारा मन नहीं माना, ठाकुर जी की प्रेरणा से लिख दिया, जो होए सो होए, हमने तो लिख दिया। हम मुंह लगे थे इसलिए हमने कहा महाराज जी उनकी भावना, बोले नहीं उनकी भावनाएं प्रभावित नहीं, ये तो हमारे अंतःकरण की भावना की अभिव्यक्ति है, उनकी भावना को हम ठेस नहीं पहुंचा रहे। आप लोगों ने कहा क्या लिखा होगा, हम बांच के सुना देते हैं। तीन चार महापुरुषों का नाम महाराज जी ने इसमें लिखा है, और फिर उसी उस वर्ष के बाद ये प्रेस में ही थी, छपके नहीं आई थी, महाराज जी भगवत धाम चले गए। तो तब समझ में आया कि महाराज जी ने सोचा कि इतने भक्तों का हमने नाम चरित्र लिखा है तो जाते जाते इन संतों का नाम भी लिख जाऊं, ये उनकी भावना थी। एक महाराज के निकट रहने वाले श्री हरिराम बाबा का भी महाराज जी ने नाम लिखा है, संकीर्तन सम्राट प्रेम भिक्षु जी का भी नाम लिखा है, और जलाराम बापा गुजरात के सिद्ध संत उनका भी नाम लिखा, और चौथे संत स्वामी राम सुखदास जी, एक पृष्ठ में ही ये चार संतों के नाम है। श्री स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, आप ऋषिकेश में विराजते थे, आप त्याग वैराग्य की साक्षात मूर्ति थे, आप संपूर्ण जीवन पर्यंत श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन चिंतन तथा लेखन करते रहे, आपने शास्त्रों ग्रंथों को निज लेखों से तथा श्री गीता प्रेस को निज लेखन से परिपूरित कर दिया, अंत में आपने निजदेह त्याग के पूर्व में जो वसीयत लिखी थी उसमें एकमात्र त्याग ही त्याग की बातों का लेखन था, वह त्याग पांचभौत देह के साथ अग्नि को अर्पित कर दिया गया, तथा आपने अनेकों को अपना स्मारक कराने पर भी प्रतिबंध लगा दिया, ये भी लेना है, तथा आपने अनेकों को, अनेक जो उनके भक्त थे श्रद्धावान थे, उनको अपना स्मारक निर्माण करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब कोई प्रसंग भी नहीं था लेकिन महाराज जी ने अपनी कलम से लिख दिया। इसका तात्पर्य है कि ऐसे महापुरुषों के सिद्धांतों को ठीक से जान करके वह प्रेरणा हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्राप्त करें, यदि उनकी मधुर स्मृतियों को हम संजोते हैं या उनका पावन स्मरण हम करते हैं, अथवा हम उनके लिए भले ही उनका ही नाम हो, उनके नाम से कोई सत्संग गोष्ठी आयोजित करते हैं, तो इसमें कोई दोष की बात नहीं है। हाँ, हम अपने लिए ये शिक्षा जरूर प्राप्त कर लें, और बात उल्टी होती है, उन महापुरुषों की बात तो हम कहते हैं और अपने को महान संत भक्त घोषित कर देते हैं, मान लेते हैं, उनके इस त्याग वैराग्य को कह सुनकर भी अपने आप को झूठी पूजा प्रतिष्ठा आदि से बचा नहीं पाते, ये हमारा मानना है। महापुरुष जिस मार्ग पर हमको चला गए हैं, उस मार्ग पर न चलकर मनमाने ढंग से यदि हम चलते हैं तो हम भले ही उनके अनुयायी हों, अपने आप को कहते हों, पर हम यथार्थ में उनके अनुयायी नहीं हैं, और भले ही संसार में हम उनके अनुयायी के रूप में प्रसिद्ध न हों, पर उनके भावों को मान करके हम ईमानदारी से सत्संग से जुड़ जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, तो हम वस्तुतः उनके सच्चे अनुयायी हैं। इसलिए बहुत ध्यान से यह बात सुने और समझें, यह उत्सव कोई मनुष्य नहीं मना रहा है। ये त्रिविध एषणा से रहित पूज्य बाबा का महोत्सव स्वयं युगल सरकार मना रहे हैं।